देवीं सरस्वती व्यासं ततोजया नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का अध्याय आठवां, इनका शीर्षक के विराट रूप का प्रदर्शन, श्लोक संख्या नंबर 41। सभी लोग कृपा करके मेरे पीछे दोहराइएगा। अथो यतावा न वीर वितर्क गोचरन् अथो यतावा न वीर वितर्क गोचरन् चेतो मनस कर्म वचो भी अंजसा चेतो मनः कर्म वचो भी रंजसा यत् आश्रयम् एन यथा प्रतीयते यत् आश्रयम् येन यथा प्रतीयते सुधुर विभवाम् प्रणत्तास्मि तत्पदम् सुधुर विभवयम् प्रणत्तास्मि तत्पदम् अथो यथा वन्न विरत् वितर्क गोचरम् चेतो मनः कर्म वचोभिरञ्जसा। यत् आश्रयम् येन यथा प्रतीयते सुधुर्विभवयम् प्रणतास्मि तत्पदम् सुदुर्विभावयम् प्रणतास्मि तत्पदम्
प्रतीयते विभागम सुरतासिमि तत्पदम अथो यथावन् वितर्क गोचरम
शब्दार्थ इस प्रकार है अथो इसलिए उसने भगवान की शरण में जाने का निश्चय किया यथावत जितनी पूर्णता से कोई अनुभव कर सकती है नहीं वितर्क गोचरम समस्त तर्क इंद्रिय बोध से परे चेतः चेतना से मनः मन से कर्म कर्म से वचो भी अथवा शब्दों से अंजसा सबको मिलकर भी सबको मिलाकर भी हम उन्हें नहीं समझ सकते।
यत आश्रयम
जिसके नियंत्रण में, यन जिसके द्वारा, यथा जिससे, प्रतीयते अनुभव किया जा सकता है कि हर वस्तु उन्हीं से उद्भूत है। सुदुर्विभाव्यम हमारी चेतना से परे, प्रणत्ता भी आसिम शरणागत हूँ, तत्पदम उनके चरणों में। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद अथवा मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करती हूँ और उन्हें नमस्कार करती हूँ जो मनुष्य की कल्पना, मन, कर्म, विचार तथा तर्क से परे हैं, जो इस विराट जगत के आदि कारण हैं, जिनसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड पालित है और जिनसे हम इस जगत के अस्तित्व का अनुभव करते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार मात्र करती हूँ क्योंकि वे मेरे चिंतन, अनुमान तथा ध्यान से परे हैं। वे मेरे समस्त भौतिक कर्मों से भी परे हैं। तात्पर्य मनुष्य को भगवान की महानता का केवल अनुभव करना होता है, उसे स्थूल या सूक्ष्म किसी भी भौतिक उपाय से उन्हें समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरल स्त्री होने के कारण माता यशोदा इस दृश्य का असली कारण नहीं समझ पाई, अथवा मातृ स्नेहवश उन्होंने भगवान को केवल नमस्कार की वे उनके बालक की रक्षा करें। वे उन्हें नमस्कार करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। कहा गया है अचिंत्या खलु ये भावना तंत्र तंतस्केना योजेत। महाभारत भीष्म पर्व में 5:22 में तर्क से परम कारण को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब हम किसी ऐसी समस्या से गिर जाते हैं जिसका कोई कारण ढूंढे नहीं मिलता, तो हमारे पास भगवान की शरण जाने और उन्हें सादर नमस्कार करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। इस स्थिति में माता यशोदा ने भी यही विधि अपनाई। जो कुछ घटता है उसका मूल कारण भगवान होता है, सर्व कारण कारणम। जब कारण का पता न चले तो हमें भगवान के चरण कमल पर नमस्कार मात्र करना चाहिए। माता यशोदा इसी निष्कर्ष पर पहुंची और अपने पुत्र के मुख में जो अद्भुत वस्तुएं उन्होंने देखी वे उसी बालक के कारण थी। भले ही वे कारण सुनिश्चित न कर पाई, अथवा जब भक्त को किसी कष्ट का कारण निश्चित नहीं हो पाता तो वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। सत्य अनुकंपा सुसमक्ष्यमाणो भुंजान एवात्म कृतम विभाकम ऋत्वाकम वपुर्विध्यन् जीवत जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। भक्त यह स्वीकार करता है कि उसे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण ही भगवान ने यह किंचित कष्ट दिया है। इस तरह वह भगवान को बारंबार नमस्कार करता है। ऐसा भक्त मुक्ति पदे या दाय भाग कहलाता है, अर्थात इस भौतिक जगत से उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। भगवद गीता में दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्थितोष्ण सुख दुखता आगमा पायिनुवा नित्यास्ताम स्थितिक शश्व भारत। हमें जानने चाहिए कि भौतिक शरीर से उत्पन्न भौतिक कष्ट आते जाते रहते हैं, अथवा हमें चाहिए कि कष्ट सहन करे और आध्यात्मिक गुरु द्वारा आदिभूत अत्यश्च अपना कर्तव्य निभाए। होम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीदपुत्रकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुधे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकलपत्रुभ्य कृपा सिंधु भयवच परितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिराधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर आज के इन श्लोकों में यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के शरण को ग्रहण करते हुए ये शिक्षा दे रही है कि किस प्रकार भगवान को जानने का क्या सुलभ मार्ग है। तो बताया गया है कि अथो यथावान न वितर्को गोचरम। तो यशोदा मैया बता रही है कि भगवान को अगर जानना है तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। अथो, यहाँ पर अथो जो शब्द है इसका अर्थ यह है कि शरणागति को ग्रहण करना। अथो यथावान, और वो भी पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति को ग्रहण करना ही सबसे उत्तम मार्ग है। किस लिए? ताकि वो भगवान की महिमा को जान सके। कोई अगर अपने तर्क बुद्धि के द्वारा अगर समझने का प्रयास करेगा तो वो विफल जाएगा, वो अपने तर्क बुद्धि से भगवान को नहीं समझ पाएगा। इसलिए यहाँ पर कहा गया है न वितर्क गोचरम, अपने तर्क बुद्धि के आधार पर भी गोचरम, गोचरम यानी कि गो यानी कि इंद्रिया, अपने समस्त इंद्रियों के आधार पर चेतो मनः कर्म वचोभीर, ये सब भगवान को समझने के लिए ये सब के बलबूते से अगर प्रयास करने का प्रयत्न करेंगे भगवान को जानने का तो वो विफल जाएगा। वो अपने स्वयं के बल या शक्ति से भगवान को नहीं जान पाएगा, क्योंकि भगवान कौन है? तो भगवान के विषय में बताया गया है कि भगवान वो जो सुदुर्विभावम, जो समस्त इंद्रियों से परे है। सुदुर्विभावम यानी कि भगवान का एक नाम है अदोक्षदे। अदोक्षदे यानी कि जो हमारी इंद्रियों से परे माने गए हैं, उसे कहा गया अदोक्षदे। तो कोई अगर अपनी इंद्रियों के आधार पर, शक्तियों के आधार पर वो सब भगवान को समझने का प्रयास करता है तो वो केवल बेकार ही अपना प्रयास कर रहा है। तो मुख्यतः यहां पर यही सार रूप में ये वर्णन किया गया है कि भगवान को अगर समझना है तो एकमात्र शरणागति के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए भगवान को समझने के लिए व्यक्ति को सबसे प्रथम उसका जो सरल जो उपाय है वो शरणागति का सरल उपाय है भगवान के विषय में सुनना। जब तक हम भगवान की महिमा को नहीं जानेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि भगवान कितने महान हैं। तो भगवान की महिमा उसे प्रथम सुनना जरूरी है। जैसे श्रील प्रभुपाद जब हॉलैंड में जब गए थे तब उस समय अर्च विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही थी, तब उसी समय वहां पर किसी भी प्रकार के क्रियाओं को उन्होंने पूर्ण नहीं किया था, सब अधूरा अधूरा था। तो प्रभुपाद सबको डांट रहे थे, फटकार रहे थे, बोले ये यहाँ पर ये कमी, यहाँ पर इस चीज की कमी है, यज्ञ हवन तैयार नहीं किया, इतना सब डांट रहे थे। और सब सब वहां पर न्यूज एडिटर वगैरह सब लोग वहां पर खड़े थे, सब अभी शुरू होने वाला है। तो कुछ लोग ये भी सोच रहे थे शायद ये प्राण प्रतिष्ठा का पहला शुरुआत होगा ऐसे ही। तब उस समय किसी ने आवाज आई पर्दे के भीतर से, और वो आवाज आई ठॉक 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 करके आवाज आया। तो प्रभुपाद जब पर्दे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद के सारे शिष्य लोग मिलकर जगन्नाथ जी को ठोक रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोले ये क्या हो रहा है? तो बोले स्वामी जी प्रभुपाद यहाँ पर ये जगन्नाथ जी का विग्रह अंदर घुस नहीं रहा है। तो अर्च विग्रह का जो अल्टर जो है वो पूजा ग्रह के अंदर घुस नहीं रहा है, तो हम इसे घुसा रहे। तो प्रभुपाद फटकारने लगे, ये थोड़ी ना तरीका है, जगन्नाथ जी को इस प्रकार क्यों बर्ताव कर रहे हो? वो अल्टर को काट दो, ऊपर का जो पूजा ग्रह का जो नक्शा है उसे काट दिया जाए। तो बोले कि वो तो बहुत सुंदर दिख रहा है। बोला कैसा भी हो उसे पहला काटो, और फिर उसे काटा गया। फिर जगन्नाथ जी को बिठाया गया। फिर प्रभुपाद और बरस पड़े, पहले से तो क्रोधित थे और लोगों पर बरस पड़े। फिर पर्दे से बाहर आए तो और लोगों को डांटने लगे। तब इतने में वहां पर कभी कोई व्यक्ति, कोई हिप्पी व्यक्ति आया था, जब शुरू किया था हाथ में जपमाला था, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के पीछे हाथ थपाया। प्रभुपाद जी ने देखा, बोला स्वामी जी वाई आर यू गेटिंग एंग्री, चैंट हरे कृष्णा। तो वो बोलने लगे कि स्वामी जी आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो? हरे कृष्णा जप करो, जप माला दिखा के बता रहा है जप करो हरे कृष्णा सब ठीक हो जाएगा। और वो आकर प्रभुपाद जी को उपदेश दे रहा है। प्रभुपाद जी भी उसकी बात को सुनकर झोली में हाथ डाल के चालू कर दिया। तो इतने विनम्र थे प्रभुपाद। यहाँ पर शिक्षा क्या है कि वो जो व्यक्ति जो था, जो कल आया हुआ व्यक्ति, उन्होंने कभी प्रभुपाद जी के विषय में सुना नहीं था, और सुना नहीं था तो केवल अपनी बाहरी चरम चक्षु के द्वारा वो देख रहा है कि ये स्वामी जी इतना सब पर क्रोधित कर रहा है। तो उन्होंने केवल अपने चरम चक्षु के आधार पर उनको उपदेश देना शुरू कर दिया। तो जब कोई बाहरी दृष्टिकोण से जब कुछ देखता है तो वो निश्चित है कि वो अपराध के स्थान पर जाकर पहुंचेगा, क्योंकि आध्यात्मिक स्थिति को अगर समझना या आध्यात्मिक विषय में अगर किसी को अपने आप को लगाना है तो वो केवल एक ही आधार है, वो है उनके प्रभाव को जानना और वो कैसे श्रवण करके। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम उस व्यक्ति को नहीं जान पाएंगे कि वो कितना महान है। वैसे ही भगवान को अगर जानना है तो उसे प्रथम श्रवण करना जरूरी है। तो जैसे दुर्वासा मुनि ने और अम्बरीश महाराज के बीच में यही अंतर था। दुर्वासा मुनि बाहरी दृष्टिकोण से बड़े विरक्त साधु दिख रहे थे और अम्बरीश महाराज बाहरी दृष्टिकोण से बड़े विषय भोगी व्यक्ति दिख रहे थे, क्योंकि उनके पास आलीशान सभी तरह से सुविधा थी। अम्बरीश महाराज के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, घोड़े हाथी सेना और हाथी घोड़े इत्यादि सभी प्रकार से वो रत्न ज्वारात से सभी तरह से वो सुशोभित थे। लेकिन समस्या ये थी कि लोग ये नहीं समझ पाया कि वास्तविक कौन क्या है। दुर्वासा मुनि के शरीर में एक भी वस्त्र नहीं था, वो पूरी तरह से वस्त्रहीन थे। तो दुर्वासा का अर्थ है कि दूर यानी कि ठीक से नहीं, वासा यानी कि वस्त्र, जिन्होंने ठीक से वस्त्र धारण नहीं किया उसे कहते दुर्वासा। तो बाहरी दृष्टिकोण से दिखाई पड़ रहा था कि दुर्वासा मुनि बड़े विरक्त साधु हैं और अम्बरीश महाराज बड़े विषय व्यक्ति हैं, लेकिन तब कौन क्या है उसका वास्तविक असली परिणाम तब पता लगा जब सुदर्शन का एंट्री हुआ। तो सुदर्शन, सुदर्शन यानी कि बहुत सुंदर दर्शन दिया कि कौन क्या है। और जब दुर्वासा मुनि को यह पता लग गया कि अम्बरीश महाराज का प्रभाव बहुत असीमित है, जब उन्होंने इस प्रभाव को जान लिए तो उन्होंने उसके चरणों पर गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। तो सुदर्शन जब आए तो क्या दृश्य हुआ, सुदर्शन जब आए तो यह दृश्य दिखाई पड़ा कि अम्बरीश महाराज के चरणों पर दुर्वासा मुनि गिर पड़े हैं। तो जब तक व्यक्ति भगवान या उनके भक्तों के विषय में जब तक सुनेंगे नहीं, तब तक वो उसके विषय में जान नहीं पाएंगे। और दुर्वासा मुनि ने कभी सुना नहीं था। ठीक इसी तरह भगवान को अगर जब तक हम सुनेंगे नहीं, जैसे दुर्योधन ने कभी भगवान कृष्ण के विषय में उन्होंने श्रवण नहीं किया था कि कृष्ण की महिमा कितनी है, इसलिए साक्षात कृष्ण को देखने के बाद भी वो कृष्ण को नहीं समझ पा रहे थे। ये दुर्योधन का दुर्भाग्य था। तभी भी दुर्योधन ये सोच रहा था कि ये कोई साधारण ग्वाल बाल है, गोपियों के पीछे दौड़ता है और केवल बांसुरी बजाने के अलावा और कुछ काम नहीं है, और यही उनका विचार था। क्योंकि दुर्योधन केवल अपने चर्म चक्षु से देख रहा था। तो उसी बात की पुष्टि यहाँ पर यशोदा मैया कर रही है। वो कह रही है कि अथो यथावा न वितर्क गोचरम, वितर्क केवल गोचरम अपने समस्त इंद्रियों के समेत ले, उसको सभी इंद्रियों के आधार पर भी अगर भगवान को देखकर कोई समझने का प्रयास करेगा या प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर समझने का प्रयास करेगा तो निश्चित है कि वो गलती कर बैठेगा, उसके अंदर अपराध करने की भावना निश्चित रहेगी। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार जब लेक्चर दे रहे थे तब उसी समय एक व्यक्ति आया, और व्यक्ति आकर उन्होंने भगवान राधा कृष्ण के कई समय तक उन्होंने दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद वो सीधे मध्य में आकर बैठ गए। और जब बैठ गए तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा, तो कैसे था तुम्हारे आंखों का मसाज? अब ये बंदा समझ नहीं पाया। तब सरस्वती ठाकुर कहने लगे, यहां पर मैं तुम्हें भगवान को दर्शन दे रहा हूं और तुम वहां जाकर अपने चर्म चक्षु के द्वारा देख रहे हो। तो अगर कोई भगवान के श्रवण जब तक नहीं करेगा या भगवान को अगर कर्णों के द्वारा नहीं देखेगा, तब तक उसकी आंखें जो तथाकथित जो आंखें जो दर्शन कर रही है वो केवल आंखों का मसाज ही है और कुछ नहीं। इसलिए हमारे गौड़िया प्रणाली में हम क्या कहते हैं, हम भगवान का दर्शन नहीं करते, हम भगवान को दर्शन देते हैं। ये वास्तविक उचित शब्द से हम ये वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान को हम अपने चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, वह हमारे पास वो योग्यता नहीं है। इसलिए भगवान को वास्तविक दर्शन करना है तो उसे दर्शन करना हो गया अपने कर्णों के द्वारा। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है ज्ञातुम दृष्टुम च प्रवेष्टुम च परणतपा। ज्ञातुम यानी कि सुनना, ज्ञातुम फिर दृष्टुम, तब जाकर दृष्टि से हम दर्शन कर पाएंगे। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर के विषय में अगर आपने कभी सुना नहीं होगा और वही एकाएक अगर आपके बगल में भी आकर खड़ा हो गया तो भी आप उसको समझ नहीं पाएगा कि ये कौन है। क्यों? क्योंकि कभी आपने उसके विषय में सुना नहीं था और उसको केवल साधारण व्यक्ति के रूप में देखोगे। और हो सकता है कि उनको हम निराधार पूर्वक उसके साथ बर्ताव भी करें, ये भी संभव है, क्योंकि हमने कभी उसके विषय में श्रवण नहीं किया या सुना नहीं। तो इसीलिए सुनने के बाद ही हम किसी को जान पाएंगे। तो वो सुनना क्या है? वो सुनना यानी कि शरणागति या किसी के शरण में, एक प्रामाणिक साधुओं के पास शरण में जाना ही वास्तविक एक प्रामाणिक शरणागति है। उनके पास जाकर क्या करना है? श्रवण करना है। बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, जैसे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद में जहां पर राजा रहुगण बताते हैं जड़ भरत को कि हे महात्मा, जब तक भक्तों के चरण धूली के द्वारा जब तक हम अपने आप का अभिषेक नहीं कर लेते तब तक हम भगवान को समझ नहीं सकते। भगवान को समझना है तो उसे क्या करना होगा? भक्तों के चरण धूलि से अभिषेक करना होगा। तो चरण धूलि से अभिषेक का अर्थ क्या है? ये नहीं कि बस चरण को पकड़कर खूब लगाओ सर पर। उसका वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ यह है कि भक्त के मुखारविंद से जो भगवान की यशोगान का जो गुणावली होता है, उस गुणावली को निरंतर सुनने से हमारे चित्त का अभिषेक होता है। तो क्योंकि जब भगवान के भक्त जब भगवान के गुणों के विषय में जब गाते हैं तब उसके मुख से एक सैफ्रून पार्टिकल, एक चरण धूली गिरती है और वो भगवान के चरण को, जो शब्द जो है भगवान के चरण को स्पर्श करके निकलने के कारण वो चरण धूली हमारे कर्णों से प्रवेश करके हमारे चित्त को शुद्ध करती है। और इस तरह व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ करता है जब वो भक्त के पास जाकर श्रवण इत्यादि करता है। तब इसी बात की पुष्टि चौथे स्कंद में जहां पर चतुष्कुमार राजा पृथु महाराज को समझाते हुए बताते हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार जब भगवान के भक्तगण जब भगवान के गुणावली को गाते हैं तो उनके मुख से वो धूली गिरती है और वही धूली हमारे कर्णों में प्रवेश कर हमें अभिषेक करती है। और जिस अभिषेक के बाद ही हम भगवान को समझने के लिए हमारे पास योग्यता आती है, अन्यथा हम अपने तर्क वितर्क या अपने प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर भगवान को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो वो सब विफल जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने भी इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर भगवान को समझने का प्रयास किया। तो जहां पर ब्रह्मा जी ने जब इस प्रयास में जब नाकामयाब हो गए तो ब्रह्मा जी को बड़ा पछतावा हुआ। तो उस पछतावे में ब्रह्मा जी ने कहा, अपने आप को क्षमा याचना करते हुए उन्होंने ये प्रार्थना की भगवान कृष्ण के विषय में, तो क्या कहते हैं? नौमिच्यते तद अब्रवपुषे तद अम्बराय। हे कृष्ण, आपका जो वस्त्र जो है इतना साधारण है, पीतांबर वर्ण के वस्त्र, और क्या है गुंजावतांश, और आपके गले में जो वरमाला जो है गुंजा, ये जो जंगलों में जो फूल जो मिलते हैं और जंगलों का फूल अब कोई महान फूल नहीं है, ऐसा नहीं कि बड़ा कीमती फूल है वगैरह, वो तो कोई साधारण जंगल का फूल है। उसी साधारण फूलों से आपने अपने गले में वरमाला के रूप में उसे धारण किए हैं। और इतना ही नहीं, परिपिच्छ यानी कि आपके सर मुख आपके पगड़ी के ऊपर वो लगाया गया है, वो क्या है, परिपिच्छ यानी कि मोर का पंख। अब ये मोर का पंख क्या है, जब मोर जब त्याग देते तभी उसे उसको श्रृंगार के रूप में कृष्ण ने स्वीकारा है। और क्या कहते, वन्याश्रजे कवल, आपका जो भोजन जो है इतना सादा है, तो अभी किसी के वस्त्र और उनके तौर तरीके को देखकर लोग नहीं समझ पाएंगे, तो दूसरा क्या है, ठीक है वो भोजन क्या करता है वो देखेंगे। अगर भोजन अगर हाईफाई है तो समझ जाएंगे कि ये बड़ा आदमी है। कभी कभी ट्रेन में भी व्यक्ति फोन लगाकर बोलता है, आज सुबह मैं ताजमहल में भोजन लिया, अभी शाम को ओबेरॉय होटल में जाऊंगा। तो वैसे वो फोन में तो बोलता है मगर वास्तविक क्या वो पता नहीं, वो केवल दूसरे को प्रभाव देने के लिए बोल रहा है, तो वो अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो वैसे व्यक्ति अपने भोजन के विषय में भी दिखाता है कि मैं भारी भोजन कर रहा हूं तो मैं बड़ा आदमी हूं। लेकिन यहां पर कृष्ण का भोजन क्या है, कवल वेत्र, बहुत सादा, उनको सबसे प्रिय क्या है, कर्ड राइस, दही चावल। अब इतना बड़ा व्यक्ति है लेकिन पसंद क्या, दही चावल। कवल वेत्र विशाल वेणु, और साथ में उनके हाथ में एक डंडा है। अब वो डंडा किसके लिए, गौओं को चराने के लिए। अब इतना ही नहीं, साथ में वेणु, अब उन्हें कुछ अगर ध्वनि बजाना है तो वेणु को उपयोग कर रहे हैं, या बांसुरी को। अगर कोई अगर बड़ा म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा वाले को बुलाएंगे, अगर कोई बड़ा बड़ा सामान लाएंगे तो लोग कहेंगे बड़ा पार्टी वाला है, ड्रम सेट लाया, कैशियो, इलेक्ट्रॉनिक कैशियो है, तो देखते ही बोलेंगे एक भारी व्यक्ति है। अगर कोई ये सब छोड़कर केवल बांसुरी लाएगा तो फिर बोले ट्रेन में घूमता होगा, कुछ चिल्लर इकट्ठा करता होगा। तो मन में यही विचार आएगा, क्यों, क्योंकि इतना सरल वस्तु है, कवल वेत्र विषाण वेणु। और इतना ही नहीं, उनका कुल कौन सा है, पशु पंकज आया, पशु पंकज आया, उस कुल से वो आए हुए हैं। तो ये सब देख कर ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई अगर अपने प्रत्यक्ष प्रमाण से, अपने गोचरम, अपनी इंद्रियों के आधार पर अगर आपको समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि वो अपराध करेगा। तो ब्रह्मा जी कह रहे, तो मैंने जो अपराध किया थोड़ी ना गलत किया, मेरा अपराध करना स्वाभाविक था। और वो क्या था, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि के आधार पर आपको समझने का प्रयास किया, इसलिए उसके ठीक बाद वाले श्लोक में कहते हैं, नेशे मही त्व अवस्थितुम मनसांतरेना साक्षात पैव किम उत्तम सुखानुभूते। वो कहने लगे, मैं आपको अपने मन की कल्पनाओं से जान रहा था, ब्रह्मा जी कहते हैं। और इसी बात की पुष्टि यहाँ पर यशोदा माई कर रही है कि देखो, अपने मन और बुद्धि के बल से अगर भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो वो कितना मूर्ख है। और उसी बात की यहाँ पर पुष्टि ब्रह्मा जी भी ठीक इसी तरह कर रहे हैं कि मैं अपने मन शांत रहना, मैं अपने मन के आधार पर आपको समझ रहा था। तो मन के आधार पर, बुद्धि के आधार पर हम आध्यात्मिक वस्तु को कैसे समझ सकते। अब देखिए, एक साधारण वस्तु ले लीजिए, अब एक साधारण संख्या लो, अगर कोई कितना भी गणित का विद्वान पंडित क्यों ना हो, जो तथाकथित मुंडेन एजुकेशन, तो वैसा वैसे व्यक्ति अगर उनको अगर कह दिया जाए कि प्रभु रामचंद्र जी के पास कितने वानर सेना थे बताओ, उसके कितने शून्य थे वो बताओ, तो वो भी नहीं बता पाएगा। क्योंकि वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी के पास कितने वानर सेना थे। वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि 100 करोड़ एक शंकु के बराबर है। अब एक लाख शंकु एक महाशंकु के बराबर है, 1 लाख महाशंकु एक पद्म के बराबर है, 1 लाख पद्म एक महापद्म के बराबर है, और 1 लाख महापद्म एक वृंद के बराबर है, 1 लाख वृंद एक समुद्र के बराबर है, 1 लाख समुद्र एक महासमुद्र के बराबर है, और 1 लाख महासमुद्र एक खर्व के बराबर है। हुआ नहीं और भी है। और 1 लाख महाखर्व एक ओघ के बराबर है, और 1 लाख ओघ जो प्रभु रामचंद्र जी के पास 100 करोड़ महाओघ बंदर थे। अब कोई अगर गणित में बड़ा निपुण है तो उनको बोलो कितना शून्य हुआ। अब ये सब सुनकर तो यही लगता है चुपचाप शरणागति को हरे कृष्णा जप करो वही सही है। तो वास्तविकता भगवान को अगर समझना है तो केवल एक ही आधार है, वो है शरणागति। कोई अगर अपने बुद्धि या तर्क के आधार पर समझेगा तो मूर्खी है। इसलिए ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ठीक इसके बाद वाले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि ज्ञाने प्रयासम उत्पस्य नमन्ते, मैं अपनी ज्ञान के बल की बुद्धि से आपको समझने का प्रयास किया सब विफल गया, उसको परित्याग करते हुए जीवन्ति सन्मुखृताम भवतीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुति तनमान मनोभीर। एक जगह पर केवल रहते हुए, एक स्थान पर उपस्थित रहते हुए केवल हमें करना क्या है, भगवान के विषय में सुनना है। केवल हम भगवान के विषय में सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवान के करीब लोग जाएंगे, और यही एक सरल मार्ग है। इसी को कहते शरणागति। और यशोदा मैया इसी बात को यहां पर पुष्टि करते हुए कहते हैं कि प्रणतास्मि तद पदम। प्रणतास्मि यानी कि उस बंदा, जो व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास करता है, उस बंदे के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है, केवल एक ही मार्ग है, प्रणतास्मि, भगवान के शरण जाओ। और इसी के आधार पर हम भगवान को समझ पाएंगे और भगवान के चरणों को प्राप्त करेंगे। इसी बात की पुष्टि यहाँ रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के संवाद में आता है। तो जब रामानंद राय से जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि बताओ जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, एक मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है क्या, तब उस समय रामानंद राय कहते हैं कि वर्णाश्रम आचरित पुंसा पुरुषेना परपुमान विष्णु आराध्यते पंथ। वो कहने लगे कि कोई अगर वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करता है तो वो वास्तविक में सर्व उत्तम वस्तु है। अगर कोई क्षत्रिय का धर्म पालन कर रहा है, वैश्य और ब्राह्मण का, ऐसे कोई अगर अपने वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक पालन करता है तो उससे सबसे उत्तम कहा गया है। तो महाप्रभु ने कहा इहो भाई आगे कहो राय। उन्होंने कहा ये तो भाई है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी व्यक्ति के अंदर ये भावना है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, और महाप्रभु तो इसके परे कोई वस्तु दिए हमें, तो इसके अंदर भी एक शारीरिक अस्तित्व बना हुआ है, इसलिए महाप्रभु ने इसको भी रिजेक्ट किया और फिर कहा आगो कहो आ राय। तब उन्होंने दूसरा कहा कि ठीक है, यद करोशी यद नाशी यद जीवोशी तदाशी, मत पुरुष तद अर्पणम, वो कहने लगे कि जो भी तुम कुछ कार्य करते हो, जो भी तुम्हारा कर्म है, वो सारे कर्म के फल को भगवान को अर्पण करो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी तिरस्कृत किया और कहा कि एहो बाय, आगे कहो रहा है। अब इसे क्यों उन्होंने तिरस्कृत किया है? क्योंकि इसके अंदर भी व्यक्ति के अंदर ये भावना रहती है कि कर्म के प्रति उनकी आसक्ति बनी रहती है, और वो भावना बनी है क्योंकि वो कर्म करने की भावना आसक्ति है, और फिर वो फल अर्पण कर रहा है, इसलिए महाप्रभु ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो ठीक है, फिर आगे कहो राय कहा। तो जब उनको आगे कहो राय कहा, तब महाप्रभु को फिर रामानंद राय ये कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। जो पूरे भगवत गीता का सार जो श्लोक है, उस सार श्लोक को बोलते हैं। महाप्रभु इसको भी तिरस्कृत करते हैं, ये हो भाई आगे कहो रहा है। अब इन्हें क्यों उन्होंने तिरस्कृत किया? क्योंकि इसके अंदर, व्यक्ति के अंदर त्यागने का अहम बैठा हुआ है कि मैंने त्यागा, और वो त्यागने का अहम उसके अंदर छुपा हुआ है, इसलिए महाप्रभु ने इसको भी स्वीकारे नहीं और इसको भी ठुकरा दिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचिति ना कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभ्यते परा। तब उन्होंने ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा का जब श्लोक कहा, तो उसमें महाप्रभु सुनकर उसको भी ये हो भाय आगे कहो रहा है। अब इसे भी उन्होंने मना कर दिया। तो क्यों मना किया? क्योंकि इसके अंदर भी, व्यक्ति के अंदर ये भावना छुपी हुई है कि मुझे हमेशा भक्ति में सुख पूर्वक स्थिति प्राप्त हो, मैं भक्ति तब तक करूंगा जब तक मुझे सुख की अवस्था आती रहेगी। तो उसके अंदर भी, उसके उस भावनाओं के अंदर भी वो स्वयं का स्वार्थ छुपा हुआ है कि मुझे दुख पीड़ा प्राप्त नहीं होना चाहिए, ऐसी अवस्था उसके अंदर छुपी हुई है। इसलिए महाप्रभु ने इसे भी स्वीकारे नहीं, उन्होंने कहा आगे कहो रहा। तब उन्होंने, रामानंद राय ने इस श्लोक को कहा, ज्ञाने प्रयास उत्पस्य नमन्ते एव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवती वार्ता स्थाने स्थिता श्रुति तनमान मनुषी। उन्होंने कहा जिस स्थान पर हो, उसी स्थान पर रहते हुए समस्त प्रकार के ज्ञान के बल को परित्याग करते हुए हमें केवल भगवान की शरण को ग्रहण करना है, इसी आधार पर हम भगवान को समझ पाएंगे। और महाप्रभु ने कहा यह है, महाप्रभु उसे स्वीकार लिया और कहने लगे बहुत अच्छे। तो कलयुग में हमारे पास केवल यही आधार है, वो क्या है कि एक जगह बैठकर भगवान के विषय में सुनना, और इसी को कहते शरणागति। सार्वभौमा प्रभु के एकाधा लेक्चर में मैं सुना, तो उसमें बता रहे थे कि कलयुग में लोगों को सुनाना मतलब ऐसा है, ऐसी अवस्था है कि घोड़े के मुंह में दवाई डालने के बराबर, क्योंकि इन लोग सुनना नहीं चाहते हैं। और वो उदाहरण दे रहे थे, एक व्यक्ति, अब भारत में हमारी ऐसी अवस्था है, एक व्यक्ति बिस्तर में लेटा था, बड़ा बीमार था, तो उसको देखने के लिए दूसरा व्यक्ति आया, वो थोड़ा बहुत खांस रहा था, तो ये जो सोया हुआ व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, उसको पूछ रहा है क्या हुआ तुम्हें, खांसी है? बोला हाँ खांसी। अरे तुम ऐसा करो, तुम थोड़ा बहुत दूध में हल्दी डालकर थोड़ा गर्म पिया करो तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वो खुद बीमार व्यक्ति है और दूसरे को उपाय बता रहा है। तो ऐसे हमारे भारत में बोलने वाले की कमी नहीं है। हम कभी कभी रिक्शा में भी बैठते तो हमारी हुलिया को देखकर रिक्शा ड्राइवर भी शुरू करते हैं, अरे प्रभु जी, हम भी हमारे जमाने में पंडित हुआ करते थे, बस उसी से शुरू हो जाता था, और फिर राम की चौपाई वगैरह सब शुरू। फिर उसको कहना पड़ता था 1 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, शांत हो जाओ। तो वैसे हमारे यहाँ पर बोलने वाले की कमी नहीं है, और सुनना मतलब बड़ी तपस्या है, और इसी को कहा गया शरणागति। कि हम कहाँ जाकर सुनेंगे, जिसके प्रति हमारी शरणागति है वहां पर। अन्यथा अगर हमारे हृदय में शरणागति नहीं है तो हम उसके पास भले ही बैठे भी रहेंगे तो भी इस कान से उस कान, इस कान। कोई ऐसा एक व्यक्ति बता रहा था, तो वैसा स्थिति हो जाएगा, तो इस कान से उस कान हो जाएगा। तो इसीलिए हमें प्रथम करना क्या है, भक्त के पास जा, शरणागति को ग्रहण करते हुए भगवान के विषय में सुनना ही सबसे सरल और उपयुक्त उपाय है, जिससे हम भगवान को जान पाएंगे। हरे क्षमा करिएगा, कल रात को ही इन्होंने हमारे टेंपल कमांडर दयामूर्ति प्रभु ने खबर दिया कि क्लास है आपका, तो कुछ वैसे कुछ श्लोक पर मैं ज्यादा मेरा पढ़ाई हुआ भी नहीं, तो हो सकता है कि कुछ बात दोबारा भी रिपीट हुआ होगा, इसके लिए क्षमा करिए। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की।